उत्पत्ति अध्याय 41। फरो का स्वप्न। पूरे 2 साल बाद फरो ने एक स्वप्न देखा। वे नील नदी के किनारे खड़े हैं। नदी में से 7 सुंदर एवं मोटी गायें निकली और घास चरने लगी। फिर और 7 गायें नील नदी में से निकली जो कुरूप तथा पतली थी। ये नदी के किनारे उन मोटी गायों के पास आकर खड़ी हो गई और कुरूप एवं दुर्बल गायों ने उन सुंदर एवं मोटी गायों को खा लिया। इससे फरो की नींद खुल गई। जब उन्हें फिर नींद आई तब उन्होंने एक और स्वप्न देखा। एक ही तने में से 7 बाले उगी जो अच्छी और मोटी मोटी थी। फिर 7 और बाले उगी जो पतली और मुरझाई हुई थी। तब पतली बालों ने मोटी बालों को निगल लिया। इससे फरो की नींद खुल गई और वह समझ गई कि यह स्वप्न था। सुबह होने पर राजा मन में बेचैन हुए, इसलिए इनका अर्थ जानने के लिए मिस्र देश के सब ज्योतिषियों एवं पंडितों को बुलवाया और फरो ने उन्हें अपने दोनों स्वप्न बताए, लेकिन कोई भी उनका अर्थ नहीं बता पाया। तब प्रधान पिलाने वाले ने फरो से कहा, आज मुझे अपनी गलती याद आ रही है। एक बार फरो अपने नौकरों से क्रोध हुए और मुझे और प्रधान खानसामे को अंगरक्षकों के नायक के घर के बंदीगृह में डाला। हमने उस कारावास में स्वप्न देखा और दोनों ही स्वप्न का अपना अलग अर्थ था। एक इब्री युवक वहां था। वह अंगरक्षकों के नायक का सेवक था। जब हमने उसे अपना स्वप्न बताया, उसने हमारे हर एक के स्वप्न की व्याख्या की। जैसा उसने बताया था वैसा ही हुआ। फरो ने मुझे तो अपना पद सौंप दिया और खानसामे को प्राण दंड दे दिया। यह सुनकर फरो ने कहा कि योसेफ को मेरे पास लाओ। उन्होंने जल्दी योसेफ को कारागार से बाहर निकाला और उसके बाल कटाकर उसके कपड़े बदलकर फरो के पास लेकर आए। फरो ने योसेफ से कहा, मैंने एक स्वप्न देखा है। उसका अर्थ कोई नहीं बता पा रहे हैं, लेकिन मैंने तुम्हारे बारे में सुना है कि तुम स्वप्न का अर्थ बता सकते हो। योसेफ ने यह सुनकर फरो से कहा, अर्थ मैं नहीं बल्कि स्वयं परमेश्वर ही देंगे। तब फरो ने कहा, मैंने स्वप्न में देखा कि मैं नील नदी के किनारे खड़ा हूं। वहां मैंने 7 मोटी एवं सुंदर गायों को नील नदी से निकलते देखा और वे घास चर रही थी। तभी मैंने देखा कि 7 और गायें निकली जो दुबली पतली और कुरूप थी। ऐसी कुरूप गायें मैंने मिस्र देश में कभी नहीं देखी। दुर्बल एवं कुरूप गायों ने उन 7 मोटी एवं सुंदर गायों को खा लिया। इतना होने पर भी यह समझ नहीं पाए कि इन्होंने उन 7 मोटी गायों को कैसे खा लिया, लेकिन वे अब भी वैसी ही कुरूप बनी हुई थी और मेरी नींद खुल गई। मैंने एक और स्वप्न देखा। एक ही तने में से 7 मोटी एवं अच्छी बाले उगी। तभी मैंने देखा कि कमजोर और मुरझाई और पूर्वी वायु से झुलसी बाले उगी तथा कमजोर बालों ने उन मोटी बालों को निगल लिया। मैंने अपने ज्योतिषियों से ये स्वप्न बताए, लेकिन अर्थ कोई नहीं बता पाया। तब योसेफ ने फरो से कहा, आपके दोनों स्वप्न एक ही हैं। इनमें परमेश्वर ने फरो को बताया है कि परमेश्वर क्या करने जा रहे हैं। 7 सुंदर और मोटी गायें 7 वर्ष है। 7 अच्छी बाले भी 7 वर्ष है। दोनों ही स्वप्न एक ही हैं। कमजोर एवं कुरूप गाय 7 वर्ष है और मुरझाई हुई बाले जो देखी वे भी 7 वर्ष। वे अकाल के होंगे। जैसा मैंने फरो को बताया ठीक वैसा ही होगा। परमेश्वर ने आपको यह दिखा दिया है कि जल्दी ही क्या होने वाला है। मिस्र देश में 7 वर्ष बहुत ही अच्छी फसल होगी और उसके बाद 7 वर्ष का अकाल होगा। तब मिस्र देश के लोग सारी उपज को भूल जाएंगे और अकाल से देश का नाश होगा। अकाल इतना भयानक होगा कि अच्छी फसल और उपज किसी को याद तक नहीं रहेगी। परो, आपने एक ही बात के विषय 2 बार स्वप्न देखे। यह इस बात को दिखाता है कि परमेश्वर निश्चय ही ऐसा होने देंगे और परमेश्वर जल्दी ही इसे पूरा करेंगे। इसलिए फरो जल्दी किसी समझदार एवं बुद्धिमान व्यक्ति को मिस्र देश का अधिकारी बनाए और फरो सारे मिस्र देश में सर्वक्षकों को नियुक्त करे और 7 वर्ष जो अच्छी फसल और उपज का है, उस समय भूमि की उपज का पंचमांश इकट्ठा करें। तब अच्छी फसल के 7 वर्षों में सारी भोजन वस्तु एकत्रित की जाए और अनाज को फरो के अधिकार में भंडार नगरों में सुरक्षित रखते जाए, और यह भोजन 7 वर्ष के अकाल से बचने के लिए पूरे मिस्र देश को देने के लिए इकट्ठा करें, ताकि लोग भोजन के अभाव में नहीं मरे। फरो तथा सब कर्मचारियों को लगा कि यह जवाबदारी योसेफ को ही दी जाए। फरो ने अपने सेवकों से पूछा, क्या हमें ऐसा कोई व्यक्ति मिल सकता है जिसमें परमेश्वर का आत्मा हो? फिर फरो ने योसेफ से कहा, इसलिए कि परमेश्वर ने ही तुम पर यह सब प्रकट किया है, तुम यह जवाबदारी लो, क्योंकि तुम जैसा समझदार तथा बुद्धिमान कोई नहीं, और तुम मेरे महल के अधिकारी होगे तथा मेरी प्रजा तुम्हारे ही आदेश का पालन करेगी। मैं सिंहासन पर बैठने के कारण राजा होकर तुमसे बड़ा रहूंगा। योसेफ मिस्र के अधिकारी। और फरो ने योसेफ से कहा, मैंने तुम्हें सारे मिस्र देश पर अधिकार दे दिया है। यह कहते हुए फरो ने अपनी राज मुद्रा वाली अंगूठी उतारकर योसेफ को पहना दी और मलमल के वस्त्र तथा गले में सोने की माला भी पहना दी। फिर फरो ने योसेफ को अपने दूसरे रथ में चढ़ाकर सम्मान दिया। रथों के आगे आगे चल रहे अधिकारी बोल रहे थे, घुटने टेको। इस प्रकार फरो ने योसेफ को संपूर्ण मिस्र का अधिकार सौंप दिया। और फरो ने योसेफ से कहा, फरो तो मैं हूँ, किंतु अब से सारे मिस्र देश में बिना तुम्हारी आज्ञा के कोई भी ना तो हाथ उठा सकेगा और ना ही पाँव। फरो ने योसेफ का नया नाम ज़ाफेनात पानिया रखा तथा उनका विवाह ओन के पुरोहित पोतीफेरा की पुत्री असेनाथ से कर दिया। इस प्रकार अब योसेफ समस्त मिस्र देश के प्रशासक हो गए। जब योसेफ को मिस्र के राजा फरो के पास लाया गया, तब वे 30 वर्ष के थे। फरो से अधिकार पाकर योसेफ समस्त मिस्र देश का निरीक्षण करने के लिए निकले। पहले 7 वर्षों में बहुत उपज हुई और योसेफ ने इन 7 वर्षों में बहुत भोजन वस्तुएं जमा की जो मिस्र देश में उत्पन्न हो रही थी। वह सब अन्न योसेफ नगरों में जमा करते गए। जिस नगर के पास खेत था उसकी उपज वहीं जमा करते गए। इस तरह योसेफ ने सागर तट के बालू समान अनाज जमा कर लिया कि उसको गिनना ही छोड़ दिया, क्योंकि उपज असंख्य हो चुकी थी। इससे पहले कि अकाल के वर्ष शुरू हो, ओन के पुरोहित पोतीफेरा की पुत्री असेनाथ से योसेफ के 2 पुत्र पैदा हुए। पहले बेटे का नाम योसेफ ने मनशशे रखा, क्योंकि उन्होंने विचार किया, परमेश्वर ने सभी कष्टों एवं मेरे पिता के परिवार को भुलाने में मेरी सहायता की है। उन्होंने दूसरे पुत्र का नाम एफ्राइम रखा, क्योंकि उनका कहना था, दुख मिलने की जगह इस देश में परमेश्वर ने मुझे फलवंत किया। जब मिस्र देश में फसल के वे 7 वर्ष खत्म हुए, तब अकाल के 7 वर्षों की शुरुआत हुई, जैसा योसेफ ने कहा था। सभी देशों में अकाल था, किंतु मिस्र देश में अन्न की कोई कमी ना थी। जब मिस्र देश में भोजन की कमी होने लगी, तब लोग फरो से भोजन मांगने लगे। फरो ने मिस्र की प्रजा से कहा, तुम योसेफ के पास जाओ, वह जो कुछ कहे वही करना। जब पूरे देश में अकाल पड़ा, तब योसेफ ने अपने भंडार खोलकर मिस्र वासियों को अन्न बेचना शुरू किया। क्योंकि अकाल भयानक था, पृथ्वी के अलग अलग देश के लोग योसेफ से अन्न खरीदने आने लगे, क्योंकि सारी पृथ्वी पर अकाल भयंकर हो चुका था।